सुखदेव जी ने भगवान कृष्ण के स्वरूप की ऐसी अनुपम झांकी का वर्णन किया कि स्वयं परीक्षित गदगद हो गए।
प्रसन्न वक्त्रम नलिनायते क्षण कदम्ब किंजल्क पिशंग वाससम लसन महारत्न हिरण मयांगदम स्फुरन महारत्न किरीट कुंडलम उन्निद्र हृत पंकज कर्णिकालय योगेश्वरास्थापित पाद पल्लवम श्री लक्ष्मणम कौसुभरत्न कंधर ममलान लक्ष्म्या वनमालयाचितम।
सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित भगवान का मुख कैसा है? भगवान के मुख पर प्रसन्नता सदैव सुशोभित रहती है। वदनम प्रसन्न सदनम, उनका मुख तो प्रसन्नता का सदन है। नेत्र कमल जैसे कोमल और विशाल, कदंब के फूल की केसर जैसा पीतांबर पहने हुए, भुजाओं में रत्न जटित भुजबंद, सिर पर मुकुट और कानों में लटके कुंडल, उनमें जटित रत्नों की आभा से पूरा मुखमंडल जगमगा रहा है उस मां के बिहारी का। उनके चरण कमल योगी राजाओं के हृदय कमल की कर्णिकाओं में सदा विराजमान रहते हैं। उनके वक्षस्थल श्री वत्स चिन्ह, गले में कौस्तुभ मणि और सदैव खिले अम्लान फूलों से बनी वनमाला सुशोभित रहती है। हे परीक्षित, ऐसी सुंदर छवि को संत लोग अपने हृदय में धारण करके उनकी दिव्य कथा कानों के दोनों में भरकर, कान ही नहीं कानों के दोनों में भरकर निरंतर पीते पीते अघाते नहीं, और उसके प्रभाव से उनके हृदय में उगा विषयों का वृक्ष कट कट कर स्वयं अलग हो जाता है, ऐसे लोग भगवान के चरण कमलों का आश्रय पा जाते हैं। उन भगवान बांके बिहारी को हमारा प्रणाम। जो लोग उनके इस रूप का पान करते हैं उनके विषय में कहा है,
पिबंति ये भगवत आत्मना सताम कथामृतम श्रवण पुटे सुसंभ्रतम पुनन्ति ते विषय विदूषिताशयं ब्रजन्ति तच्चरण सरोरुहांतिकम।
जो भगवान के इस स्वरूप का ध्यान और अपने कानों से उनकी कथा अमृत का पान करते हैं वो वास्तव में परम पवित्र हो जाते हैं और सदैव भगवान के चरण कमलों के उस केसर में निवास करने के लिए एक आश्रय पा जाते हैं। भगवान कृष्ण ही एकमात्र सार हैं और जगत तो सारा असार है, वही सत स्वरूप है और शेष असत रूप। जगत में आए हो तो असार विषयों में भटक कर क्यों अपना जीवन व्यर्थ ही गंवा रहे हो? अल्पश्च आयु बहवश्च विघ्न सारम ततो ग्राह्यम अपास्य फल्गु। जीवन कितना छोटा है उस पर ध्यान दो, और उसमें भी कितने विघ्न भरे हैं इस पर भी ध्यान दो। अतः भक्तों, सार सार तो गही लहो और थोता देही उड़ाए, सार ग्रहण करो, असार तत्व को फटक दो, उड़ा दो, जीवन को सार्थक बना लो, क्योंकि इस संसार में सार तत्व तो भजन है,
जग असार में सार रचना हरि हरि बोल, जग असार में सार रचना हरि हरि बोल, जग असार में सार रचना हरि हरि बोल, 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 जग असार में सार रचना हरि हरि बोल। ये तन है एक जर जर नैया, ये तन है एक जर जर नैया, केवल हरि का नाम खिवैया, केवल हरि का नाम खिवैया, हो जा भव से पार रसना हरि हरि बोल, हो जा भव से पार रसना हरि हरि बोल, जग असार में सार रसना हरि हरि बोल, 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 जग असार में सार रसना हरि हरि बोल।
परीक्षित ज्ञानी थे, वे अवसर खोना नहीं चाहते थे। सुखदेव जैसे परमहंस ऋषि तुल्य ज्ञानी से वो निर्गुण पर ब्रह्म का ज्ञान पा लेना चाहते थे। उन्हें मालूम था कि भगवान का सगुण रूप तब तक नहीं जाना जा सकता जब तक उसके निर्गुण रूप के दर्शन न हो जाएं। उन्होंने उपनिषद पढ़े थे, उन्हें पता था कि वहां लिखा है असद वा इदमग्रमासीत तस्मा सद अजायत। भगवान की सदमयी सगुण लीला सृष्टि से पहले सब कुछ निर्गुण पर ब्रह्म में अंतर्धान था, तिरोधान था। जब तक मूल का ज्ञान ना हो तब तक फूल का ज्ञान कैसे हो सकता है। इसीलिए परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा, हे महर्षि, आप तो सर्वज्ञ हैं, आपको ज्ञात होगा कि ब्रह्मा जी ने एक समय नारद को निर्गुण ब्रह्म का उपदेश दिया था। आप उस विषय को स्पष्ट करते हुए मुझे पहले निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देने की कृपा करें। सुखदेव जी ने कहा, राजन, तुमने निर्गुण ब्रह्म के विषय में जो जिज्ञासा प्रकट की है वो बहुत ही अच्छी है, बड़ी उचित है। ब्रह्म का मूल रूप तो निर्गुण निरूप में ही है। निर्गुण ब्रह्म मूल है, उनसे किसी की तुलना नहीं की जा सकती। वो अपनी ही माया में विशिष्ट होकर अनेकों रूपों में दिखाई देते हैं। समस्त सगुण रूपों के कारण निर्गुण निरूप में ब्रह्म का दर्शन जन साधारण के लिए अत्यंत कठिन और कठिनता से साध्य किया जा सकता है। उसके लिए प्रभु के सगुण रूप का ध्यान, पूजा, अर्चना करना सहज और सरल हो जाता है। निर्गुण ज्ञेय अर्थात जानने के योग्य है, वो ज्ञान स्वरूप ज्ञान का विषय है, किंतु सगुण तो दर्शनीय है। निर्गुण ब्रह्म चिंतन मनन से प्राप्त होता है, जबकि सगुण ब्रह्म श्रद्धा से, भक्ति से जन साधारण को साध्य हो जाता है। इसीलिए संसार चक्र में घूमते हुए जन साधारण व्यक्ति के लिए कल्याण का एक ही मार्ग है, वो है श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति प्राप्त करना।
नाहि अतोन्यः शिवा पंथा विशता संसृता विह वासुदेवे भगवती भक्ति योगो यतो भवेत।
भगवान के निर्गुण निरूप में रूप को तो पूरी तरह से ब्रह्मा भी नहीं जानते।
ना ज्ञायसे भगवतो गतिरित्यवद्यम्।
अष्टांग योग के निरंतर अभ्यास से कोई कोई योगी निर्गुण ब्रह्म का आभास मात्र कर पाता है। अतः भगवान कृष्ण की मधुरिम लीलाओं में अनुरक्ति प्रेम भक्ति करो, जो भगवान के निर्गुण और सगुण रूप से परे हैं। ये पूर्ण सत्य हैं, पूर्ण ज्ञान हैं और आनंद की पराकाष्ठा हैं। जब आनंद कंद भगवान कृष्ण के दिव्य दर्शन होने लगेंगे, उनमें तादात्म भाव जग जाएगा, तभी भगवान के दिव्य रूप में लय होना संभव होगा। भक्त चिल्लाकर बोल उठेगा, प्रभु त्वदीय वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत्। ये शरीर मन और आत्मा आपकी दी हुई है, आपको समर्पित करता हूं। मेरा जब कुछ है ही नहीं, तेरा ही है, तो तुझको समर्पित करने का अधिकार भी मेरा कहाँ है। मैं समर्पित करता हूं, इसमें भी कर्ता भाव छिपा है। मैं कर्ता नहीं हूं, कर्ता धर्ता तो आप हैं प्रभु। मेरा जीवन आपके होने से होना है, ये भाव भक्त को मुक्ति से भी आगे ले जाने वाला है। गीता में भगवान ने भक्तों के उद्देश्य को दृष्टि में रखकर उनके चार भेदों के विषय में कहा है,
चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनोर्जुन, आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ।
चार प्रकार से लोग मेरा भजन करते हैं, मुझे मेरी सेवा करते हैं। उनमें से पहला है आर्त, दुखी। दूसरा है जिज्ञासु। तीसरा कोई कामना लिए हुए होता है। और चौथा ज्ञानी होता है, जिसे ज्ञान के लिए ही परमात्मा के दर्शन चाहिए। लेकिन भागवतकार व्यास जी ने भक्त के तीन प्रकार माने हैं। पहले भक्त वे साधारण लोग हैं, जिनमें काम भी है, क्रोध भी है, सारे विकार ज्यों के त्यों हैं, किंतु वे भगवान के प्रति भी अनुराग रखते हैं, भगवान के प्रति भी आसक्ति रखते हैं, अनुरक्ति रखते हैं। उनको व्यास जी ने तामस भक्त कहा है। उनके मन में बार बार ग्लानि जगती है और भगवान के सामने बैठकर निवेदन करते हैं, हे प्रभु आप मेरी लाज बचाएं, मैं मर्यादा से भटक रहा हूं, मेरी लाज आप ही रख सकते हैं।
तुम मेरी राखो लाज हरी हरी, तुम मोरी राखो लाज हरी, अब गुण मोते बिसरत नाही, अब गुण मोते बिसरत नाही, हर छिन घड़ी घड़ी पल छिन घड़ी घड़ी, सब प्रपंच की बांध पोटरी अपने शीस धरी, अब मोरी राखो लाज हरी हरी, अब मोरी राखो लाज हरी।
एक बार सूरदास जी यमुना घाट पर बैठकर यही भजन गा रहे थे कि सदगुरु वल्लभाचार्य जी आ गए। भजन सुनकर बोले, अरे सूर ऐसे काहे घिघियात हो, भगवान कृष्ण की लीला में रमी जाओ, भूल जाओ अपने को, केवल कृष्ण हैं और कुछ है ही कहां, जिसका वर्णन करते हो। बस सूरदास की दृष्टि बदल गई, वो गोपी बन गए और आत्मरूप कृष्ण रस का पान करने लगे और बन गए अमर कृष्ण लीलाओं के गायक। दूसरे प्रकार के भक्त वे होते हैं जिनके मन में ऐश्वर्य आदि पाने की कामना रहती है, किंतु भगवान के प्रति श्रद्धा भक्ति भी पूरे जोश खरोश के साथ रहती है। वे लोग धार्मिक अनुष्ठानों में धन से काम नहीं हुआ तो थोड़ी सी तन से सेवा कर ली और बाद में मन, ये तीनों लगाने को वो तत्पर रहते हैं। ऐसे भक्तों को व्यास जी ने राजस भक्त कहा है। तीसरे भक्त वो हैं जो अनन्य भाव से भगवान में रमे रहते हैं, पूरी तरह से समर्पित। हे प्रभु, तुम ही हो, अन्य कहीं कुछ नहीं है। वे अपना अस्तित्व भी नहीं मानते, केवल कृष्ण, केवल कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे निरंतर गाते रहते हैं। वे भक्त सात्विक भक्त कहा है वेद व्यास ने। भक्तों, भगवान तो सर्वव्यापी हैं, किंतु इस तथ्य को न मानकर कुछ लोग केवल मंदिर में स्थिर भगवान के विग्रह में, भगवान की मूर्ति में ही सब कुछ मानते हैं, सेवा अर्चना अर्पित करते हैं। उनका परमात्मा भाव मंदिर तक सिमटा हुआ है। वास्तव में उनकी पूजा व्यास जी ने विडंबना कही है। केवल भगवान की मूर्ति में आस्था रखना और भगवान के प्रकट रूप इस जगत की अवहेलना करना, जीवों को, मनुष्यों को परमेश्वर न मानते हुए उनका तिरस्कार करना आडंबर नहीं तो और क्या है। भगवान ने श्रीमद् भागवत में मैत्रेय से स्वयं कहा है, अहम् सर्वेषु भूतेषु भूतात्मावस्थितः सदा तम अवज्ञाय मामृत्या कुरुते चाविडम्बनम्। अर्थात कृष्ण कहते हैं मैत्रेय से, मैत्रेय, मैं तो सभी प्राणियों में विद्यमान हूं, इसलिए मनुष्य को मेरा रूप देखना चाहिए। प्राणियों में भिन्नता नहीं देखनी चाहिए। फिर भी इस तथ्य को नकारते हुए जो लोग मेरी अर्चा पूजा करना चाहते हैं, मंदिरों में जाते हैं, मूर्ति पे प्रसाद चढ़ाते हैं, नैवेद्य चढ़ाते हैं, वे विडंबना में ही भटक रहे हैं। भक्तों, वास्तव में हम प्रतिमा पूजन नहीं करते। बार बार मंदिर में जाकर जब भगवान का विग्रह अपनी आंखों से देखते हैं तो आंख मीच कर भी उसी को अपने हृदय में भी देखने का यत्न करते हैं और दूसरे प्राणियों के हृदय में विराजमान भगवान के दर्शन को भी उसी रूप में देखने का प्रयत्न करते हैं। वास्तव में मंदिरों में स्थित भगवान का विग्रह हमारे हृदय में स्थित भगवान का अनुभव करने का एकमात्र उपाय है। ये एक सोपान है, एक सीढ़ी है अपने ही हृदय में प्रवेश करने की। प्राणी मात्र में विराजमान परमात्मा के दर्शन करने के लिए ये मंदिर पाठशालाएं हैं। मंदिर में स्थित भगवान के सुंदर विग्रह का ध्यान, पूजन, अर्चना करते करते वो झांकी चित्त में ऐसे चढ़ जाती है कि हर प्राणी में, हर वस्तु में, यानी कि जगत के कण कण में सभी जगह वही छवि दिखाई देती है और कुछ दिखता ही नहीं, क्योंकि वास्तव में कृष्ण के अतिरिक्त और है भी क्या। कृष्णात् परम किमपि तत्त्व अहम् न जाने, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। भगवान के दर्शन जीव पदार्थों में करते करते अपने अंदर भी वो भगवान के दर्शन होने लगते हैं, फिर मैं तू का भेद मिट जाता है। सर्वम ब्रह्ममयम जगत, सारा संसार ही परमेश्वर का स्वरूप दिखाई पड़ता है।
सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम रामा, करहूं प्रणाम रामा, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी।
कृष्णात परम किमपि तत्व अहम न जाने, कृष्ण से बड़ा और कृष्ण से परे कुछ और भी है ये कोई नहीं जानता।
कृष्ण नाम कह लीजे हे मन, कृष्ण नाम कह लीजे हे मन, कृष्ण नाम कह लीजे। गुरु के वचन राखे हृदय के वचन राखे हृदय में, संत समागम कीजे हे मन, कृष्ण नाम कह लीजे हे मन, कृष्ण नाम कह लीजे। पढ़िए सुनिए भगति भागवत, कहिए सुनिए भगति भागवत, और वेद सुन लीजे हे मन, कृष्ण नाम कह लीजे हे कृष्ण नाम कह लीजे।
सुखदेव जी ने परीक्षित से कहा, राजन भगवान के मंदिर में स्थित विग्रह की उपासना, मूर्ति की उपासना तभी तक उपयोगी है जब तक सब में व्याप्त सबके हृदय में विराजमान परमात्मा के दर्शन नहीं होते।
अर्चादवु अर्चये तावत् ईश्वरं मा स्वकर्म कृत, यावन्न वेद स्वहृदि सर्वभूते स्वस्थितम्।
सगुण पूजा के लिए भी काठ, और काठ से अच्छा पत्थर, पत्थर से श्रेष्ठ वृक्ष, वृक्ष से श्रेष्ठ जीव, जीवों में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य, और मनुष्यों में सर्व गुण संपन्न सदाचारी धार्मिक व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ है। परमात्मा ही प्रत्येक वस्तु में समाया हुआ है, अंतर केवल उसकी कलाओं में, अंशों में और मात्रा में है। किसी में एक कला में भगवान विद्यमान है और किसी में एक से अधिक कलाओं में। पूरी 16 कला तो भगवान कृष्ण,
ईश्वरो जीव कलया प्रविष्टो भगवानिति,
ब्रह्मा विष्णु महेश से लेकर कीट पतंगे तक पंच भौतिक पदार्थों क्षिति जल पावक गगन समीरा से लेकर वृक्ष तृण नदी पर्वत तक परमात्मा ही परमात्मा है। कहीं अधिक अंशों में, कहीं कम अंशों में, उसके अतिरिक्त और कुछ यदि है तो वो अज्ञान है। झुका दे सिर को अपने सामने गर कोई आ जाए, अगर पूजा ही करनी है तो ईश्वर सब में रहता है। भक्तों जीव तो मरी खाल है, जो भगवान की प्रेरणा से प्रति क्षण सांस लेती है और छोड़ती है। यदि परमात्मा की ओर से एक क्षण भी सांस ना मिले तो मरी खाल के अतिरिक्त और है क्या। उसके ऊपर अहंकार कि मैंने यह किया और मैंने वो किया, ये कर्ता भाव परमात्मा के शरीरस्थ होने पर, शरीर में है परमात्मा इसीलिए यह भाव भी उत्पन्न होता है, लेकिन अज्ञानी जीव उसको परमात्मा का व्यक्तित्व न समझकर अपना कृतित्व समझने लगता है और कर्म बंधन में ऐसा बंध जाता है जिससे छूटना अत्यंत कठिन होता है। एक योनि से दूसरी योनि, दूसरी योनि से तीसरी योनि, ऐसे ही चक्र काटता हुआ जीव निकलने का कोई मार्ग खोज नहीं पाता। विचारा भूल भुलैयों में भटका हुआ जब तक सभी प्राणियों में परमात्मा को नहीं देख लेता और अपने में भी उसी पर ब्रह्म के दर्शन नहीं कर लेता, तब तक वो कर्म बंधन में बंध कर कर्म का भोग और भोग का कर्म इसी आवर्तन में, इसी चक्र में घूमता रहता है। इसलिए हे प्राणियों, भगवान की भक्ति से जुड़ जाओ और इस बंधन से छुटकारा पालो। भगवान की कृपा मनुष्य के मन में भक्ति का बीज होती है जिससे ज्ञान और वैराग्य के अंकुर फूटते हैं। ईश्वर को सब में देखना ज्ञान है और ईश्वर के अतिरिक्त सभी नश्वर वस्तुओं विषयों के असार तत्व को जानना वैराग्य है। केवल ईश्वर के कमल लोचन चरणों में अपने तन मन धन कर्मों को समर्पित करना वैराग्य है और चरण कमलों को अपनी अनुरक्ति आसक्ति और भक्ति का विषय बनाना ज्ञान है। व्यक्ति जैसे ही भगवान वासुदेव की भक्ति से जुड़ता है उसको ज्ञान और वैराग्य दोनों ही मिल जाते हैं। वसुदेवे भगवती भक्ति योगो प्रियोजिता जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानम यद ब्रह्म दर्शनम। भक्ति ज्ञान और वैराग्य ये तीनों सोपानों पर सीढ़ियों पर चढ़कर ही व्यक्ति ब्रह्म के मंदिर तक पहुंच पाता है और दर्शन कर पाता है। पद्म पुराण में वर्णित नारद और भक्ति की कथा का आशय भी यही दिया गया है कि ज्ञान और वैराग्य के बिना केवल भक्ति योग से ब्रह्म के दर्शन नहीं होते। एक समय नारायण से ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभो जब जीव आपका ही अंश है तो वो आपको ही क्यों भूल जाता है? प्रश्न बड़ा सटीक था। नारायण हंस पड़े हैं, उनके दांतों की चमक से सारा विश्व चकाचौंध हो गया। बोले, हे विधाता, ये सारी सृष्टि मुझसे निकलकर ही बाहर की ओर विकसित हो रही है, इसी कारण मेरे बाहर निकले ऐश्वर्य से जीव विमोहित हो जाता है। वो भी बाहर की ओर फैले विषयों की ओर आकर्षित होता है। मुझे पाने के लिए मनुष्य को पीछे की ओर देखना पड़ता है। इंद्रियां अपने भोग विषयों को छोड़कर मन की ओर चले, मन बुद्धि की ओर चले, बुद्धि प्रज्ञा की ओर चले और प्रज्ञा आत्मा की ओर चले। देखे, आत्मा ही तन मन बुद्धि का जनक है। आत्म साक्षात्कार करने वाला व्यक्ति ही परमात्मा के दर्शन कर पाता है। ये जगत उल्टा लटका हुआ विकसित हो रहा है, जड़ मूल ऊपर, तना छादन फूल पत्ते सब नीचे। स्वधिष्ण्यम प्रतपन प्राणो बहिश्च प्रतपत्यसौ एवं विराजम प्रतपस्तपत्यंतरवही पुमान। जैसे सूर्य अपने मंडल से निकल बाहर की ओर प्रकाश फैलाता है, वैसे ही पुराण पुरुष परमात्मा भी संपूर्ण विराट विग्रह से निकलकर बाहर सृष्टि भर में प्रकाशित होता है। वो नहीं दिखता, उसका प्रकाश दिखता है। उसको पाने के लिए उसके मूल की ओर तपोमयी यात्रा करनी पड़ती है, तब कहीं मिलते हैं परब्रह्म के दर्शन। ऊर्ध्वमूलो अधःशाखा, गीता में भी यही कहा गया है। तब भगवान ने ब्रह्मा जी को भागवत सार चार श्लोक में कह सुनाया, ये यदि समझ में आता है तो जीव जगत और ब्रह्म की गांठ स्वयं खुल जाती है। वे चार श्लोक इस प्रकार हैं। अहमेवा समेवाग्रे नान्यत यत सद सत्य
परम पश्चादहं यदेतच्च यो अवशिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टानि अप्रविष्टानि यथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वं जिज्ञासुमात्मनः अन्वयन् व्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा
भक्तों भगवान ने ब्रह्मा जी को अपना स्वरूप अपनी स्थिति और अपनी लीलाओं को बताते हुए कहा हे ब्रह्मन इस सृष्टि से पूर्व केवल मैं था अहमेवा समय वाग्री सबसे आगे मैं था सद असद कुछ भी नहीं था सृष्टि के पर्यावसान होने पर भी मैं ही बचा रहा था मैं ही शेष था सृष्टि में जो कुछ दृश्य और अदृश्य है वो सब मेरी माया से भासित होता है जैसे आकाश आदि पंच महाभूत प्रत्येक प्राणी में प्रत्येक वस्तु में होते हुए भी अपने स्थानों पर भी विद्यमान रहते हैं आकाश आकाश में विद्यमान रहता है और हम में भी ऐसे ही वायु अपने स्थान पर विद्यमान रहती है और हम में भी ऐसे ही अग्नि अपने स्थान पर विद्यमान रहती है और हम में ही वैसे ही मैं भी सब में व्याप्त रहकर सबसे परे रहता हूं मेरे अतिरिक्त कहीं कुछ है ही नहीं मैं ही सर्वत्र व्याप्त होते हुए भी निर्लिप्त सर्वातीत हूं सब में हूं और सबसे परे हूं लोगों का ये कहना कि ये ब्रह्म नहीं है वो ब्रह्म नहीं है कहना ये चाहिए ये भी ब्रह्म है वो भी ब्रह्म है ब्रह्म के अतिरिक्त कहीं कुछ नहीं है सर्वदा सर्वत्र वो एक ही पर ब्रह्म है भक्तों भागवत के 10 लक्षण बताए जाते हैं अर्थात 10 विषयों की चर्चा और विवरण इस पवित्र ग्रंथ में उपलब्ध है 10 विषय प्रश्न उठता है 10 ही क्यों मेरे विचार से इसका कारण है शरीर का 10 गात्र होना 10 ही इंद्रियां हैं यदि भागवत भगवान में 10 विषयों की समीक्षा की गई है तो उचित ही है भागवत व्यक्ति के 10 गात्रों का विमोचन करके उसे दिव्य मोक्ष प्रदान करता है भागवत का पहला लक्षण है सर्ग सर्ग अर्थात सृष्टि जब तक सृष्टि की उत्पत्ति और प्रलय की प्रक्रिया को न जाना जाएगा तब तक जीव जगत को कैसे समझा जाएगा और जीव और जगत को समझकर ही ब्रह्म के दर्शनों का मार्ग निकलता हुआ दिखाई पड़ेगा नारद ने पितामह से पूछा विधाता इस जगत का क्या लक्षण है इसका आधार क्या है ये किससे उत्पन्न होता है और लय किस में होता है वस्तुतः ये किसके अधीन है ब्रह्मा ने गंभीरता से कहा नारद तुमने मुझको विधाता कहा जैसे इस जगत का सृष्टा आदि मैं ही हूं किंतु नारद ये सत्य नहीं है मैं जिस परमेश्वर के चिन्ह में प्रकाश से प्रकाशित हूं वही इसके आधार है ये संपूर्ण जगत उन्हीं से उत्पन्न होकर उन्हीं में लय होता है जैसे सूर्य को प्रकाशित करते हैं वैसे ही उन परमात्मा ने मुझको भी प्रकाशित कर रखा है वही मायापति भगवान अनेकों रूपों में आविर्भूत और तिरोभूत होते रहते हैं वास्तव में मैं उन्हें उनके सतरूप में नहीं जानता। जैसे अंग अपने अंगी को नहीं जानता, जैसे कठपुतली अपने नचाने वाले को नहीं जानती, वैसे मैं मेरे ऋषिपुत्र और स्वयं कैलाश पर्वत पर रहने वाले भगवान शंकर भी उन्हें संपूर्ण रूप से नहीं जानते। मैं ब्रह्मा, तुम नारद, सनकादि, शंकर, विष्णु, प्रजापति आदि देवता से लेकर कीट पतंगे तक उसी महाशक्ति परमेश्वर के भगवत स्वरूप हैं। वो उनमें परिलक्षित होते हैं, किंतु हमसे परे कितने हैं हम नहीं जानते। इतना भी नहीं जानते कि वो सर्वत्र सर्वदा विराजमान हैं तो कहाँ हैं। भगवान सर्वभूतेषु लक्षिता स्वात्मना हरि। भागवत का दूसरा लक्षण है विसर्ग। विसर्ग अर्थात सृष्टि के विकास की कथा। यज्ञेन यज्ञम मजयन्तः स्तेवास्तानि प्रसमान्यासन। एक यज्ञ, एक सृष्टि से दूसरी सृष्टि उत्पन्न होती है। भागवतकार ने उसे ही विसर्ग कहा है। भगवान के सभी अवतार विसर्ग के अंतर्गत आते हैं। ये सृष्टि सूक्ष्म और स्थूल अर्थात दृश्य दोनों प्रकार से साथ साथ विकसित होती है। जहां एक ओर काल से महत तत्व, महत तत्व से अहंकार, पृथ्वी आदि महाभूत अहंकार के ही रूपांतरित हैं, ज्ञान इंद्रिय और कर्म इंद्रिय भी अहंकार के परिणाम हैं। अहंकार से तन्मात्रा, तन्मात्रा से क्रिया शक्ति, सात्विक अहंकार से सृष्टि के विकास कारण देवता और मन की उत्पत्ति होती है। अहंकार के रज तमस गुणों से वनस्पति, औषधि, लता, वृक्ष, पक्षी, पशु आदि मैथुनी सृष्टि उत्पन्न होती है। स्थूल सृष्टि से विकास के लिए भगवान को भिन्न भिन्न अवतार लेकर सृष्टि विकास की बाधाओं को नष्ट करना पड़ता है। यही भगवान की जन्म की लीला का रहस्य है। समस्त अवतार इसी रहस्य से जुड़े हुए हैं। भागवत का तीसरा लक्षण है भूगोल। भुवन कोश, जिसमें हरिर्वर्ष, रम्यक वर्ष, केतुमाल वर्ष, हिरण्यमय वर्ष, कुरु वर्ष, किम पुरुष वर्ष, भद्रास्त वर्ष, रम्य वर्ष और भारत वर्ष, इन नौ वर्षों का उल्लेख है। वर्ष का अर्थ है खंड, कालखंड या भूमि खंड। संपूर्ण पृथ्वी को भागवतकार ने नौ वर्षों में विभाजित किया है। धर्म सम्मत व्यवहार मानने वाले मनुष्य भारत वर्ष में ही रहते हैं। धर्म के दस लक्षण धृति, क्षमा आदि मनुष्यों के लक्षण हैं। जब तक पशु की भांति उत्पन्न और विकास ग्रहण करने वाला ये जीव धर्म के इन दस लक्षणों को आत्मसात नहीं करता, तब तक पशु ही रहता है। यूं कहिए कि पशु से भी निकम्मा रहता है। धर्म पशु को मनुष्य बनाने की प्रक्रिया है, इसलिए भारतवर्ष में धर्म का नाम नहीं है, क्रिया का कोई नाम नहीं होता। द वर्ब कैन नॉट बी नेम्ड। समाज शुद्धाचरण के पैरों पर खड़ा होता है। आचरण में अधर्म घुसा और समाज का भवन भरभरा के नीचे गिरा। दुराचरण में फंसा व्यक्ति यदि भगवान की रात दिन उपासना भी करता रहे तो वो व्यर्थ है। ईश्वर के विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने के लिए योग्यता प्रमाण पत्र जुटा लेना पड़ता है। धर्म ही योग्यता का प्रमाण पत्र है। परिवार, समाज, देश, प्रकृति और विश्व धर्म के आधार पर टिके हुए हैं। आकाश, पृथ्वी, नक्षत्र, ग्रह आदि सभी हमें धारण किए हुए हैं। वे भी हमारे शुद्धाचरणों का आधार लेकर प्रकृति में हैं। भागवतकार ने जहाँ पृथ्वी और पृथ्वी के चारों ओर फैले परिसर का ज्ञान दिया है, वहीं उस परिसर के लिए मानव को धर्म पर चलने का उपदेश भी दिया है। साथ ही समय, मात्रा, नाप आदि का वैज्ञानिक ज्ञान भी प्रदान किया है। भागवत का चौथा लक्षण है पोषण। भगवान के अनुग्रह से सबका पालन पोषण होता है। अनुग्रह करना परमात्मा का स्वभाव है। उनका विशेष अनुग्रह भक्ति और उपासना से प्राप्त होता है। ध्रुव, प्रहलाद, बलि आदि ने भगवान का विशेष अनुग्रह प्राप्त किया। पांचवा लक्षण है ऊति। ऊति मन की समस्त वासनाओं को भगवत सेवा में अर्पित कर देना ही ऊति है। वासना एक ही रहे कृष्ण को पाने की, कभी उन्हें स्नान, कभी चंदन, कभी श्रृंगार, कभी शयन, कभी उनकी लीलाओं का गान, कभी केवल नाम स्मरण। तात्पर्य यह है कि जीवन के सभी कार्य भगवान कृष्ण को समर्पित करते हुए किए जाएं। कर्ता वही है, कर्म भी वही है, सब कुछ उसी का है और उसी को समर्पित है।
हे दया में कृष्ण तुम संसार के आधार हो, तुम ही कर्ता कर्म हो, तुम ही जगत विस्तार हो। नाम को ही अलग लेकिन वस्तुता तुम एक हो, जग तुम ही हो, जीव तुम ही, ब्रह्म अपरंपार हो। जन्म तुम हो, जात तुम ही, जनक जननी आप हो, जगत के इस पार तुम हो, जगत के उस पार हो। हे दयामय कृष्ण तुम संसार के आधार हो।
भागवत का छठा विषय है मनवंतर। मनवंतर 14 होते हैं और प्रत्येक मनवंतर का एक पृथक मनु माना गया है। बार बार एक ही क्रम में सृष्टि विस्तार पाती है और लय होती है। यथा पूर्वम कल्पयत, वेद का वाक्य है, जैसे पहले सृष्टि हुई थी उसी क्रम में फिर से सृष्टि होगी, फिर से सृष्टि होगी, फिर से प्रलय होगी, फिर से सृष्टि होगी। भागवत का सातवां लक्षण है ईशान कथा, अर्थात परमेश्वर और उनके भक्तों की कथाएं। इसमें भगवान के अवतार, उनकी लीलाएं। भगवान के अवतार के तीन मुख्य कारण प्राय धर्म की पुनर्प्रतिष्ठा, दुष्टों का संहार और सज्जनों की रक्षा ही होते हैं। सारे पुराणों में ऐसा ही माना गया है। आठवां विषय है निरोध। निरोध अर्थात रोकना, चित्त वृत्तियों को विषयों से हटाकर भगवान के श्री चरणों में लगाना निरोध कहलाता है। चित्त वृत्ति निरोधा योगा, ये योग का ही एक प्रकार है जिसमें व्यक्ति समस्त विषयों से चित्त वृत्ति को रोककर भगवान के श्री चरणों में लगा दे, वो निरोध है। संसार के विषय बड़े सुंदर आकर्षक होते हैं, चित्त की वृत्तियों का उनमें फंस जाना बड़ा सहज है, स्वाभाविक है। एक चित्त होने के लिए निरोध कितना आवश्यक है ये अब आपको पता चलेगा। भक्तों नवा लक्षण है मुक्ति। जैसे कीचड़ में कमल रहता है, उस पर न जल का प्रभाव पड़ता है, न कीच का, न मिट्टी का, वैसे ही जिस पर संसार के दुख सुख हानि लाभ जीवन मरण पाप पुण्य रोग शोक ताप शाप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो मुक्त है। जीवन मुक्त, जीता हुआ मुक्त, विषयों में फंसा हुआ नहीं है, सांसारिक विषयों के प्रभाव से अप्रभावित रहना ही मुक्ति है। भागवत का दसवां लक्षण है भगवत प्राप्ति। पूर्ण रूप से समर्पित होना ही भगवान की प्राप्ति है। जब मैं हूं तो प्रभु नहीं है, एक ही रह सकता है। एक म्यान में जैसे दो तलवारें नहीं रह सकती, वैसे ही मैं और भगवान एक साथ नहीं रह सकते। मेरा पूरा समर्पण यदि भगवान को हो जाए और भगवान ही भगवान रहे, मैं ना रहूं, तो भगवान मिल गए ऐसा मानना चाहिए। समर्पण ही भगवान की प्राप्ति का एकमात्र सर्वश्रेष्ठ साधन है। समर्पण अर्थात दो का एक होना, यह है अद्वैतवाद का सबसे बड़ा सिद्धांत। हे परीक्षित, ये ज्ञान स्वयं नारायण ने ब्रह्मा जी को दिया था। ब्रह्मा ने नारद को सिखाया, नारद ने वेद व्यास को दिया और व्यास जी ने अपने पुत्र यानी मुझे सुखदेव जी को प्रदान किया है। संसार में मैं यानी सुखदेव इसका प्रथम प्रवक्ता है और तुम प्रथम श्रोता हो। हे परीक्षित, हे परीक्षित, इस ज्ञान के श्रवण मात्र से भगवत प्राप्ति होती है। भगवान की प्राप्ति ही वस्तुतः आनंद की प्राप्ति है। कृष्ण प्राप्ति करम शश्वत प्रेमानंद फल प्रदम श्रीमद भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। भक्तों, सुखदेव जी के द्वारा कही हुई ये परमादरणीय श्रीमद भागवत कलयुग में भी भगवान कृष्ण की प्राप्ति करवा देती है। बड़ा कठिन है इस युग में जब सब लोग सुविधा में व्यस्त और विषयों में मस्त हैं। ऐसे युग में भगवान कृष्ण की प्राप्ति अद्भुत है, प्रेम और आनंद की वर्षा करती है, अद्भुत है। ये शास्त्र श्रीमद् भागवत जिसको पढ़ने से भगवत प्राप्ति हो जाए। श्रीमद् भागवत में भक्त और भगवान दोनों की ही कथाएं हैं। भागवत का अर्थ ही है भगवान से संबंधित, उनकी अपनी दिव्य लीलाएं और भगवान से संबंधित भक्तों की कथाएं। भगवान तो भक्त के प्रेम आश्रु में सने हुए दुपट्टों से बंधे हुए हैं। जहां भक्त की कथा है वहां भगवान की दिव्य लीला का अनुपम गान भी है। क्रम में भक्त ध्रुव की कथा सर्वप्रथम कही जाती है। स्वयंभू मनु के दो पुत्र थे, उत्तानपाद और प्रियव्रत। उत्तानपाद राजा हुए, बड़े थे। उनकी दो पत्नियां थी सुनीति और सुरुचि। वास्तव में भगवान प्राप्ति के भी दो मार्ग हैं, निवृत्ति मार्ग और प्रवृत्ति मार्ग। सुनीति साधिका थी, निवृत्ति मार्ग पर तपस्या करती हुई भगवत भक्ति में लीन रहती थी। दूसरी सुरुचि सांसारिक विषयों में फंसकर सुखों की खोज में व्यस्त रहती थी। दोनों के एक एक पुत्र था। सुनीति का ध्रुव जो अपनी मां के तपाहपूत संस्कार ग्रहण कर रहा था, दूसरी ओर सुरुचि का पुत्र उत्तम मां के अहंकार और विषयों से युक्त सुखों में पल रहा था। एक दिन ध्रुव अपने पिता के दर्शन के लिए तपोभूमि की कुटी से निकलकर राजभवन में गया। राजा को ध्रुव बड़ा आकर्षक लगा, उन्होंने प्रेम से उठाकर उसे अपनी गोद में बिठा लिया। उसी समय सुरुचि आ गई, क्रोध में भर गई, बिल्कुल आग बबूला, झड़कते हुए ध्रुव को गोदी से नीचे खींच लिया। बोली, ये गोद मेरे पुत्र उत्तम की है, किसी ऐरे गहरे की नहीं। ध्रुव रोता रोता अपनी मां के पास गया। सुनीति ने समझाया, पुत्र राजा की गोद क्षणभंगुर है, आज है कल नहीं भी हो सकती है। तू तो भगवान श्री हरि की शाश्वत गोद प्राप्त कर, उनका शाश्वत धाम प्राप्त कर, जिनके चरणों में सारा जगत सिर झुकाए खड़ा रहता है। तत्तात गच्छ भद्रम ते
यमुनायास्तटं शुचिः पुण्यं मधुवनं यत्र सानिध्यं नित्यदा हरे।
हे पुत्र, तुम्हारा सदा कल्याण हो। तुम यमुना के पवित्र तट पर जाओ, वहां पुण्यमय मधुवन है जिसमें श्री हरि स्वयं निवास करते हैं। ध्रुव माता को प्रणाम करके निकला, मार्ग में नारद जी मिल गए। उन्होंने ध्रुव के ध्रुव संकल्प को देखा और भगवान को प्राप्त करने की युक्ति बता दी। द्वादश अक्षर मंत्र की शिक्षा भी दी। ये मंत्र बड़ा पुण्य देने वाला है, आओ कुछ देर हम इस मंत्र का जाप करें।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
द्वादश अक्षर मंत्र ओम एक, नमो दो, भगवते चार, वासुदेवाय पांच, पांच चार नौ, दो ग्यारह और ओमकार बारह। ये बारह द्वादश अक्षर मंत्र है, बड़ा पवित्र, बड़ा पुण्य और सब कुछ देने वाला। ध्रुव एक निष्ठ होकर इसी द्वादश अक्षर का जाप करने लगा। ध्रुव के प्रेम भक्ति से भरे तप से इंद्रासन हिल गया। उन्होंने भगवान श्री हरि से प्रार्थना की, हे प्रभु, इस बालक की मनोकामना शीघ्र पूरी कर दो, अन्यथा सारा ब्रह्मांड इसके तप की अग्नि से भस्म जाएगा। भगवान मुस्कुरा उठे, बोले, देवेंद्र, जिस परम तप से ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ है उससे भस्म कैसे हो जाएगा। समय पर भगवान विष्णु ध्रुव के सामने प्रकट हो गए। भगवान जहां वहां क्या संभव नहीं है। बालक ध्रुव की वाणी फूट पड़ी,
यो अंतः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ता संजीवयत्यखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्।
ध्रुव बोला, प्रभु, आप सब कुछ करने में समर्थ हैं। आपने ही मेरे अंतःकरण में प्रवेश करके मेरी सोई हुई वाणी जगा दी है। ये मेरे हाथ पैर, ये त्वक, ये हड्डियां, ये इंद्रियां और प्राण आपकी अहेतु की कृपा से चैतन्य हैं। हे पुरुषोत्तम भगवान, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूं। भगवान ने चरणों में पड़े ध्रुव को बड़े प्रेम से उठाकर अपनी गोद में बिठा लिया।
बोलो भक्त और उनके भगवान की जय।
कहते हैं, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब कोई। मधुबन के दिव्य प्रकाश से चमत्कृत होकर सारी प्रजा उसी ओर दौड़ पड़ी। राजा स्वयं सोने का सिंहासन हाथी पर रखकर उसी ओर चल पड़े। बड़े आदर से ध्रुव को राजपद प्रदान किया। सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, लोग तपस्वी सन्यासियों की अत्यंत प्रशंसा करते हैं और उनको आदर पूर्वक ऊंचा आसन देकर बिठाते हैं, किंतु आश्चर्य की बात यह है कि ध्रुव से लेकर प्रियवत तक भगवान के सभी भक्त ग्रस्त थे। गृहस्थ भक्ति मग्न होकर सब में परमात्मा के दर्शन सहज ही कर लेता है, जबकि तपस्वी तप से और सन्यासी ज्ञान से परमात्मा भाव इतनी सरलता से आत्मसात कार नहीं कर पाता। परीक्षित ने पूछा, गुरु प्रवर, गृहस्थ तो भिन्न भावों, भिन्न विचारों और भिन्न कर्मों में संलग्न रहता है, ऐसी स्थिति में उसमें तन्मयता स्थिर कैसे रह पाएंगे, और बिना तन्मयता के प्रभु प्राप्ति कितनी दुष्कर है ये तो आप जानते ही हैं।
सुखदेव जी ने कहा, नैवं विधा पुरुषकार उरक्रमस्य पुंसाम तदंघ्रि रजसा जित षड गुणानां चित्रं विदूर विगता सकृदादीतं यन्नाम धेय मधुना सजहाति बंधम।
राजन भगवान के श्री चरणों की धूल के कणों को यदि आप भजते हैं तो उसके प्रभाव से भूख प्यास मोह शोक जरा मृत्यु इन षड गुणों को ग्रस्त और आप भी सहज ही जीत लेंगे, उनमें तन्मय भाव भी स्थिर हो जाएगा। ये आश्चर्यजनक बात नहीं है। भक्तों, भगवान के नाम का उच्चारण एक बार भी श्रद्धा भक्ति और तन्मयता से कोई करता है वो भवबंधन से तत्काल मुक्त हो जाता है।
सकृदुच्चरित येन हरिरित्यक्षरद्वयं बद्धः परिकरस्तेन मोक्षाय गमनं प्रति।
हरि, इन दो अक्षरों का एक बार उच्चारण करने से व्यक्ति के सकल परिवार और परिकर सबका ही एक साथ उद्धार हो जाता है। जिसने हरि के दो अक्षरों को अपनी जिह्वा के अग्रभाग में धारण कर लिया है, गोमुख सहित सभी तीर्थ उसके घट में निवास करते हैं। श्री हरि संकीर्तन मृत्यु के बाद की यात्रा में भी जीव का साथ देता है। हरि नाम संसार रोग की औषधि है, इसीलिए इसे भवौषधि कहा जाता है। निरंतर हरि हरि बोलो, जागते सोते खाते पीते नहाते अर्थात जीवन के प्रत्येक काम को हरि नाम से जोड़ दो। हाथ में काम और मुख में हरि नाम, यही है
हरि बोल 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 हरि बोल। बोलो कृष्ण भगवान।